नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्षों के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई हैं।
पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
राज्य सरकार भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूजल के संरक्षण और विनियमन के लिए बिहार भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2026 लाने की दिशा में तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिले। उन्होंने भू जल स्तर में सुधार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को अपनाने पर जोर दिया। इस बैठक में विभागीय मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक को ही थानाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में चिन्हित 208 थानों के अलावा 217 थानों को सामान्य श्रेणी के थानों में उत्क्रमित किया गया है। इन थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन या अल्पकालिक अवकाश की स्थिति में पुलिस निरीक्षक रैंक से नीचे के किसी भी पदाधिकारी को इन थानों में प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र गोरौल फेज एक में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बैठक उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 एकड़ में स्थापित होने वाली इस इकाई के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में 6 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 8 मई से प्रभारी हो गया है। आदेश में कुछ अधिकारियों की वेतन पेंशन से कटौती और वेतन वृद्धि पर रोक की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे।
इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गौरतलब है कि पिछले महीने आयोजित पुरस्कार के पहले चरण के तहत बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और डोमकच लोक नृत्य परंपरा के पुरोधा विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग के अनुसार मानसून की रेखा फिलहाल गया और मुजफ्फरपुर से गुजर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है।
24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इस बीच दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बराज से 1,955 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मानसून अवधि में 4 महीने के प्रतिबंध के दौरान अन्य राज्यों में बालू की बिक्री और परिवहन की अनुमति दे दी है। खान और भूतत्व विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बालू स्टॉक के लाइसेंसधारी 26 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के बाहर बालू भेज सकते हैं। इसके लिए ई चालान निर्गत किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज और कल 13 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों से परिचालित होगी। रेलवे की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 6 और कल 7 विशेष ट्रेनें चलेंगी। इधर आगामी 27 जून से दानापुर और पुणे के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह साप्ताहिक ट्रेन पुणे से प्रत्येक शनिवार और दानापुर से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं धनबाद मंडल में छीपा दोहर बरवाडी मंगरा रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन चालू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। साथ ही 16 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। लखीसराय जिले में आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलाने वाले संगठित गिरोह के 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में यह कार्रवाई की गई है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के 3 परीक्षा केंद्रों से 9 फर्जी परीक्षार्थी, सहयोगी और बायोमेट्रिक कर्मियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किउल तथा कवैया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवहर जिले की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक दोषी को 20 वर्ष कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। मधुबनी जिले में कलवाही थाना पुलिस ने मांगा टोल बेलाही में छापेमारी कर 100 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 एक दिवसीय लीग मुकाबले में टीम बी ने टीम ए को 5 विकेट से हरा दिया। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड में खेले गए मुकाबले में टीम ए के लिए कप्तान और विकेटकीपर अक्षरा गुप्ता ने 68 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी है। अखबार लिखता है मेडिकल छात्र ने बनाया स्कॉलर गैंग, 30 गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजी 260 करोड़ की राशि। दैनिक भास्कर ने लिखा है पीएमसीएच में अब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक छत के नीचे। प्रभात खबर की विशेष खबर है म्यूचुअल फंड निवेश में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल, औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 80,731 करोड़ रुपए पहुंचा। आज अखबार का शीर्षक है भरत तिवारी मुठभेड़, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं लखनऊ की कोचिंग में लगी आग, 15 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।